नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं पल्लवी जैसल और आप सुन रहे हैं लिव लाइव मोर शो। हमारी इसी शो के जरिए आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर, और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से।
सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, अब बहरेपन का इलाज संभव। गूंगे व बहरे 9 महीने से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल लाया है मुफ्त जांच कैंप 15 जून शनिवार सुबह 10 से 1 तक।
मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है दोस्तों, पहले जो ऑपरेशन बड़े चीरे के द्वारा किए जाते थे, आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है, जिसे आम तौर पर आप दूरबीन की सर्जरी के नाम से जानते हैं। लेकिन साइंस यहाँ थमी नहीं, इससे भी आगे की एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। जी हाँ, रोबोटिक सर्जरीज के रूप में, और लिव लाइफ मोर शोज में हम आपको रोबोटिक सर्जरीज के बारे में जानकारी दे चुके हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बारे में, जिससे कि हेड एंड नेक प्रॉब्लम्स रोबोटिक सर्जरीज के साथ सॉल्व की जाने लगी हैं। आज हम बात करेंगे रोबोटिक ENT सर्जरीज के बारे में, और दोस्तों आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे देश के वरिष्ठतम ENT सर्जन्स में से एक, डॉक्टर अशोक गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के लिव लाइफ मोर शो में।
थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब, लिव लाइफ मोर शो में हम बात कर चुके हैं बहुत सारी सर्जरीज के बारे में, जो कि अब रोबोटिक सर्जरीज का रूप ले चुकी हैं, जैसे कि गाइनी कैंसर्स में हमने बात की, नी रिप्लेसमेंट में हमने रोबोटिक सर्जरीज के बारे में बात की। लेकिन आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं रोबोटिक ENT सर्जरीज के बारे में, तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि किस तरह की आम प्रॉब्लम्स रोबोटिक सर्जरीज के द्वारा आप ट्रीट करते हैं।
सबसे बड़ी इंडिकेशन रोबोट की है कैंसर। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत आपने सुना होगा कि ये कैंसर ऑपरेबल नहीं है, हम इसको सिर्फ पैलिएशन दे सकते हैं, क्यूरेटिव इलाज नहीं है, इनएक्सेसिबल एरिया, अनअप्रोचेबल एरियाज। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो कैंसर की प्रोग्नोसिस गंदी हो जाती है। अगर हम किसी भी कैंसर को निकाल दें और उसके बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी दें तो रिजल्ट अच्छा होगा, किंतु सिंपल रेडिएशन या कीमो से हर कैंसर पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपने हेड एंड नेक की बात की, सो सबसे पहला ऑपरेशन जो पॉपुलर हुआ वो ओरल कैविटी के कैंसर हुए, क्योंकि वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ इंसान की उंगली नहीं पहुँच सकती, सो सर्जिकल इनएक्सेसिबिलिटी थी। जब हमने इन कैंसर्स को देखा तो रोबोटिक की आर्म फ्लेक्सिबल होती है, वो 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए रोबोट द्वारा उन कैंसर्स का भी इलाज हो सकता है जो आज तक कहा जाता था कि इनका इलाज नहीं है। सो दैट वाज मेन एडवांसमेंट। दूसरी एक इंडिकेशन थायराइड सर्जरी है। थायराइड आपने सुना होगा कि बहुत कॉमन डिजीज है और सर्जरी होती है, बहुत अच्छी सर्जरी होती है, इलाज बहुत अच्छा होता है, किंतु एक ग्रुप ऑफ पेशेंट आता है, पर्टिकुलरली दो सेलिब्रिटीज जो अपनी गर्दन पे स्कार नहीं चाहते, और इसलिए उनका जो थायराइड है वो बढ़ता जाता है, कई दफ़ा थायराइड में कैंसर होता है, और वो इनवेरिएबली या तो अपना प्रोफेशन लूज कर जाते हैं या डिजीज़ बहुत एडवांस होने के बाद हमें कंटेक्ट करते हैं। आज थायराइड को भी रोबोटिक सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है। उसके अंदर दो अप्रोचेज हैं, एक को ट्रांस एक्सिलरी कहते हैं, एक को रिट्रो ऑरिकुलर। ये दो अप्रोच होती हैं जिसमें गर्दन के फ्रंट हिस्से पे कोई स्कार नहीं पड़ता और रोबोटिक की आर्म्स उस छेद से टनल बना के कान के बिल्कुल पिछले हिस्से से या बाजू के अंदर से हम रोबोटिक की आर्म डालते हैं और उसे थायराइड निकाल देते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोफेशन में जा सकते हैं, आपकी नेक पे स्कार नहीं होगा। तीसरी एक बहुत बड़ी इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो आपने सुना होगा, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मीन्स खराटे आना, खराटे के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप होना, इसका मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की और बीमारियां भी होंगी, तो उसका इलाज भी रोबोटिक द्वारा किया जा सकता है।
सब जब हम स्लीप एपनिया या स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं तो पेशेंट्स को आमतौर पर एक भारी भरकम सा मास्क दिया जाता है जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जब आप सर्जरी करते हैं स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के को ठीक करने के लिए, तो क्या उसके बाद उनको ये पंप्स लगाने पड़ते हैं?
जब हम स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करते हैं सो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। वन इज कि उसका वेट कितना है। अगर वेट फिर दोबारा बढ़ने लगेगा तो कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी। तो आपको एक सिग्निफिकेंटली अपना जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करना है जो आपकी ज़रूरत है। नंबर दो, उसको मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, अब बहरेपन का इलाज संभव। गूंगे व बहरे 9 महीने से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल लाया है मुफ्त जांच कैंप 15 जून शनिवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक।
तो दोस्तों, अभी हमने सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से ये जाना कि अगर ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो उसमें पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपना लाइफस्टाइल सही रखना है ताकि आपका वज़न ना बढ़े और इसके और इस सर्जरी के आउटकम्स जो हैं वो बेहतर हों। डॉक्टर साहब, जब भी रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम बात करते हैं हमारे जहन में आता है एक रोबोट जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, और ये भी कुछ लोगों को हैरत में डाल सकता है कि क्या एक मशीन मेरा ऑपरेशन करेगी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है और क्या वाकई एक रोबोट खड़ा होता है और वो सर्जरी कर रहा होता है?
नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम रोबोट की बात करते हैं, वर्ल्ड में दो टाइप के रोबोट होते हैं, एक को एक्टिव रोबोट कहते हैं, एक को पैसिव रोबोट कहते हैं। एक्टिव रोबोट में मेमोरी होती है, इसका मतलब जैसे आपने किसी को एज ए गार्ड अपॉइंट कर दिया, उसको कोई शेडो दिखेगी तो उसकी मेमोरी कहेगी इसको मारो और वो मार देगा, उसको एक्टिव रोबोट कहते हैं। जो सर्जरी के रोबोट होते हैं ये पैसिव रोबोट होते हैं, इनकी मेमोरी नहीं होती। इनका फ़ायदा क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में कुछ ट्रेमर होती है जब सर्जरी करते हैं, वो ट्रेमर रहती है, तो इसमें ट्रेमर फिल्टर्स लगे होते हैं जिसमें हाथ कांपेगा तो उसमें नज़र नहीं आएगा और उसमें पता नहीं लगेगा। दूसरा, मैग्नीफिकेशन, हम किसी भी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे। तीसरा, हम 1 मिलीमीटर तक का मार्जिन लेके सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब रोबोट द्वारा सर्जरी की जाती है तो प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो रोबोट होता है इसका सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। फ़ायदा होता है कि हम एक टीम में काम करते हैं, एक को कंसोल सर्जन कहते हैं जो मेन सर्जन होगा, और एक सर्जन पेशेंट के साथ होगा। जो कंसोल सर्जन है सारे कंट्रोल्स उसके पास होंगे। जैसे हम जानते हैं हमारे दो हाथ हैं, सो हम दो ही हाथ यूज़ करेंगे, किंतु जब हम रोबोट यूज़ करते हैं तो हम 4 हाथ हो जाते हैं, 2 हाथ अपने 2 पैर। सो रोबोट की चारों चीज़ें 2 पैर और 2 हाथ से कंट्रोल हो जाती हैं, और मेमोरी ना होने के कारण वो 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जा सकता उसे जो जितना कि हमने कमांड ना दी हो। सो एडवांटेज सिर्फ यही है कि वो मशीन है, टेक्निक है, किंतु कंट्रोल्ड बाय अ सर्जन है, प्रिसीजन है और मैग्नीफिकेशन है। इसका मतलब जो आउटपुट होगी उसके हिसाब से बहुत अच्छी।
तो डॉक्टर साहब, जो हमने आपसे अभी जाना उससे मुझे लगता है कि जैसे बच्चे हमारे एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन जो इमेजेस या जो भी उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन पर होते हैं उनका सबका कंट्रोल जो है वो बच्चों के हाथ में होता है, जिनके हाथ में कंसोल होता है, प्लेस्टेशन होता है। जैसे कि अभी हमने सर्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक सर्जरी के बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिकवरी का। तो डॉक्टर साहब, क्या रिकवरी जो पेशेंट्स की है उसमें अगर उनकी रोबोटिक सर्जरी होती है तो रिकवरी में उनका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इसका असर पड़ता है?
देखिए, क्योंकि प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, चीरा नहीं लगेगा या चीरा मुँह के अंदर लगेगा या कहीं और लगेगा, उससे रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। जो नॉर्मल पेशेंट हम 3rd या 4th दिन डिस्चार्ज करते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। सेकंड, हम उनको अर्ली फीडिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर ऑपरेट करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, तो हम उनको 6 से 7 दिन तक दाखिल रखते हैं, 10 दिन तक फूड पाइप लगा के रखते हैं, ड्रेन डाल के रखते हैं, जो कि 7 दिन तक रहेगी। किंतु अगर रोबोटिक सर्जरी होगी तो यही सारा प्रोसीजर 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस हैं कि हीलिंग अच्छी होगी, और सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा था, कि वो कैंसर जहाँ पे ह्यूमन अप्रोच नहीं थी वहाँ पे रोबोटिक आर्म पहुँच सकती।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, उनमें जो रिकवरी है वो फास्टर होती है, तो डॉक्टर साहब क्या ये जो सारी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है या कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास रोबोट होना चाहिए। अगर रोबोट नहीं है तो ट्रेनिंग नहीं होगी। इसकी एक बड़ी अग्रेसिव ट्रेनिंग होती है। वर्ल्ड में अभी तक 2 सेंटर्स हैं जो हेड एंड नेक ट्रेनिंग देते हैं। मेन सेंटर अमेरिका में है और एक और सेंटर है जो कोरिया में खोला है, जो सिर्फ थायराइड को कराते हैं। उसके ऊपर पहले कुछ टेस्ट होते हैं, हमने भी दिए थे जब पीजीआई में थे। सो उसके टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी हो तब आपको पिक करते हैं फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो अमेरिका में होती है। फिर उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप रोबोटिकली ट्रेंड हो और रोबोटिक सर्जरी कर सकते हो। सो हमने वो प्रमाण पत्र वहाँ लिया था जब वहाँ रोबोट आया था और हेड एंड नेक सर्जरीज हमने वहाँ शुरू की थी। अब हम उस स्टेज पे हैं जब हम अपने अंडर जूनियर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन करके फ़ायदा ये होगा कि उन्हें सर्टिफिकेशन लेने में इजी रहता है। कोई भी अच्छा सर्जन ट्रेनिंग ले सकता है। जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में ट्रेंड है, जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में ट्रेंड है, वो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी में अच्छे साबित होते हैं। ये दुनिया का मानना है, क्योंकि हमें एक आदत होती है कि हाथ और आँख की कोऑर्डिनेशन बना के, क्योंकि जब हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं हम सब स्क्रीन की तरफ देख के हाथ से सर्जरी करते हैं। इसका मतलब हमें हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन चाहिए और रोबोट में भी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो एक अच्छा सर्जन डेफिनेटली रोबोटिक सर्जन बन सकता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन हों रोबोटिक सर्जरी में, ताकि हर इंसान को जिसको कैंसर है या कोई और कॉस्मेटिक इशू है वो ठीक हो सके। भारतवर्ष में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम हमेशा पॉपुलेशन को कर्स करते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, किंतु पॉपुलेशन के साथ बीमारियां भी ज़्यादा हैं। इसलिए जो डॉक्टर इंडिया में ट्रेन होता है वो बाहर भी अच्छा साबित होता है। सो हमारे अब इंडिया में मेडिकल हब बन गया, हमें इंटरनेशनल पेशेंट बहुत आता है। हर दुनिया के कोने में एक वो रहती है कि मैं इंडिया जाके ऑपरेट करा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंडोस्कोपिक सर्जरी सीखें या रोबोटिक सर्जरी सीखें, ताकि वर्ल्ड में हम एक नंबर वन पे आ सकें।
और डॉक्टर साहब, आपका जो जज्बा है कि हर इंसान को इस तकनीक से फ़ायदा हो सके, और आपने जैसे जिस भावना के साथ हमें ये बताया कि हर सर्जन को रोबोटिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश और भी ज़्यादा तरक्की करेगा मेडिकल साइंस में।
नहीं, जैसे आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके माध्यम से किसी भी ENT सर्जन को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी कॉन्टैक्ट करें। अगर हमारी रोबोटिक सर्जरी चल रही हो, आप हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर आएँ, देखें और सीखें।
तो डॉक्टर साहब, इस सारी जानकारी के लिए हमें इतनी सहजता से, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।
It was pleasure to talk to you.
So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। और इस प्रोग्राम पर अधिक जानकारी के लिए आप जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9815196731। So this is your host Pallavi Chasal signing off. Till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Chasal.
सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? अब बहरेपन का इलाज संभव। गूंगे व बहरे 9 महीने से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल लाया है मुफ्त जांच कैंप। 15 जून शनिवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक।